क्या आपने धीरेलिस अर्तगरल देखा है? ये वो सवाल था जो कुछ अरसे पहले पूछा गया या कहीं पढ़ा, तो सबसे पहले कुदरती तौर पर जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि धीरेलिस अर्तगरल है क्या। तो इसका जवाब यह है कि तुर्की के मारूफ फिल्मसाज इदारे का बनाया हुआ सीरियल धीरेलिस अर्तगरल एक तिलस्म कदा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। ये वो आईना है जिसमें माजी और हाल इकट्ठे दिखाई देते हैं। ये उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से ठीक 800 बरस पहले देखा गया, जब मंगोलों की आफत, खिलाफत की कमजोरी और मुसलमानों की तकसीम ने दिलो दिमाग वीरान कर रखे थे। ये आज भी उम्मत का ख्वाब है जो मगरबी तहजीब के गलबे, खिलाफत के खात्मे और मुस्लिम दुनिया की तकसीम के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग को रोशन रखे हुए है। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया में जो पजीराई मिली है वो अपनी मिसाल आप है। अगर जरा आसान लफ्जों में कहूं तो धीरेलिस अर्तगरल एक तुर्की ड्रामा है जो तुर्क काई कबीले के सरदार अर्तगरल की जिंदगी पर बनाया गया है। 13वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ चुकी थी, मंगोल पै दर पै हमलों से मुस्लिम दुनिया के तख्तो ताराज कर रहे थे, उसी दौर में काई कबीला, जो बहुत से दूसरे तुर्क कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था, पहले हलब और फिर सोगत में जाकर आपात हुआ। काई कबीले के जिस सरदार को पहले शोहरत मिली वो सुलेमान शाह थे। उन्हीं के एक बेटे अर्तगरल ने सलेबियों की साजिश और मंगोलों के हमलों के खिलाफ न सिर्फ तुर्क कबीलों को एक लड़ी में पुरो दिया बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत के नाम पर 700 साल तक दुनिया के नक्शे पर कायम रही, जिसने अरब व अजम को फिर से खिलाफत की वहदत तले इकट्ठा कर दिया और जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 बर्र आजमों पर इस्लाम का परचम लहराया। ये अजीम उस्मानी खिलाफत जब तक पैरों पर खड़ी रही, मुसलमान दुनिया की सयादत पर फाइज रहे। इसे मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज भी कहा जाता है। यही वजह है कि बर्तानिया और फ्रांस समेत तमाम यूरोपी ताकतें न सिर्फ इससे खौफजदा थीं, बल्कि सामने आकर इससे मुकाबला करने के बजाय पसे पर्दा इसे गिराने के लिए साजिशों में मसरूफ भी रहती थीं। लेकिन तमाम तर साजिशों, अरब तुर्क झगड़ों और कमाल अतातुर्क जैसे लोगों की मदद से अहले यूरोप को इस अजीम सल्तनत को गिराने में पूरे 150 साल लगे। ये एक अलग और तवील कहानी है। इस रिकॉर्ड तोड़ सीरीज में सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की कहानी को फिल्माया गया है। क्या है सल्तनत उस्मानिया, जरा तफसील से मुलाहिजा कीजिए। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका नाम यह है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तगरल गाजी था। उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, वहीं खेमे गाड़ कर डेरा डाल दिया। इन कबीलों में कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशात थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे, सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ, उसके 3 बेटे थे। मंझला बेटा अर्तगरल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। अर्तगरल गाजी बहादुर, नडर, जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज्म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था, मुसलमान मंगोलों के आगे लग कर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में अर्तगरल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीले को लेकर सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। रस्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। उसे ये नहीं मालूम था कि वो लश्कर किसके हैं। कुछ सोच समझ कर उसने फौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने उन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि उनको कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया ये सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बास के नजदीक वो बाजंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान उनकी बहादुरी से खुश हुआ और अर्तगरल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर अता की और ये कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने उनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाजंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तगरल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजात और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور یعنی شہر جو کہ برسہ کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ برسہ کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 میں وفات ہوئے۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ ارطغرل غازی کے لیے ایک نظم، جو عثمانی خلافت کا ہے بانی ارطغرل غازی، تو امت پر ہے رب کی مہربانی ارطغرل غازی، تو شیروں کی طرح لڑتا رہا باطل کی فوجوں سے، صدا کی تو نے حق کی ترجمانی ارطغرل غازی، چٹانوں سے کہیں مضبوط تیرا عزم دیکھا ہے، تو کر گزرا ہے جس کی تو نے ٹھانی ارطغرل غازی۔ صلیبی سازشیں ہوں یا ہوں منگولوں کی ہٹ دھرمی، مٹا دی تو نے ان سب کی کہانی ارطغرل غازی، تیرا شیوا مصائب جھیل کر ثابت قدم رہنا، تہے خنجر عدو کی ایک نہ مانی ارطغرل غازی، ہمیشہ اتحاد امت مسلم کا دائی تھا، جہاں کرتا ہے تیری مدح خانی ارطغرل غازی، تو اپنوں اور غیروں میں صدا انصاف کرتا تھا، مثالی تھی تمہاری حکمرانی ارطغرل غازی، تیرے روشان بابر نور گل سچے مجاہد ہیں، جنہوں نے کی مشن کی پاسبانی ارطغرل غازی، جہاد فی سبیل اللہ کا بچپن سے تھا دیوانہ، کھپا دی اس میں پھر اپنی جوانی ارطغرل غازی، وہ دشمن کی صفوں کو رونتا تھا اس طرح رف رف کہ جیسے ہو ایک آفت آسمانی ارطغرل غازی۔